नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 62 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की। सरकार ने कायाकल्प पहल के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था लागू की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने तिहाड़ जेल में गौशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अफ्रीकी मूल के सदस्यों को गिरफ्तार किया। और ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप में जैस्मीन लंबोरिया फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 62 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है, जिन पर लगातार काम जारी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने का हर संभव प्रयास कर रही है।
दिल्ली में ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पे कूड़ा करकट के कारण ट्रैफिक जाम है, जहां पे पोल्यूशन है उसके कारण, जहां पे डस्ट मिटिगेशन है उसके कारण। उसके ऊपर आज हमारे सारे मंत्री इंस्पेक्शन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। हमारी कोशिश है कि जो हम हॉटस्पॉट्स जो है, लगभग 62 और ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर हम उनको रोक पाएंगे तो पोल्यूशन में और कमी आएगी। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, ये पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग है।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों के आयोजन के खिलाफ निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। न्यायालय में न्यायमित्र ने दलील दी कि नवंबर दिसंबर में वायु प्रदूषण के चरम समय के बावजूद स्कूल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। न्यायालय को बताया गया है कि ये स्कूल जाने वाले बच्चों को गैस चैम्बर में डालने जैसा है। एम्स के डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। नई दिल्ली स्थित एम्स के पल्मोनरी और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बच्चों को सलाह दी है कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने पर वे बाहर खेलने या बाहरी गतिविधियों से बचें।
मास्क पहन के निकलो जितना भी हो सके, जब बहुत खराब एयर क्वालिटी हो, अगर जरूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर जाना है तो ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर हो। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक जॉगिंग वगैरह अभी ना करें, बच्चों को भी ना करें, एल्डरली लोग भी ना करें, इंडोर ही करें जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है। आसपास साफ सफाई, कोई चीज जलाए ना वगैरह वगैरह।
इस समय दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 395 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने आज कायाकल्प पहल के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि इस पहल के अंतर्गत सप्ताह के प्रत्येक दिन विभिन्न रंग की चादर बिछाने का नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को बेहतर महसूस कराना है। श्री सिंह ने कहा कि नई चादर उपलब्ध होने और प्रतिदिन चादर बदलने से अस्पताल में आने वाले मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और अस्पताल का वातावरण बेहतर होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली के सौंदर्यीकरण और सुनियोजित विकास के लिए आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार वर्ल्ड सिटी की विरासत को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए जल्द ही शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि पुरानी दिल्ली का पुराना गौरव लौटे और यहां के स्थानीय निवासियों तथा व्यापारियों को समुचित नागरिक सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने शहर का समग्र विकास करने की बड़ी योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साहिबी नदी के किनारे स्थित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल भराव, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि नदी का पानी सड़क पर भर जाने से सड़क बार बार खराब हो रही है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे ठीक करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को भविष्य में इस समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज शहर के हौसखास इलाके का दौरा किया। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कमियों की पहचान कर अधिकारियों को सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने आज तिहाड़ जेल में गौशाला का उद्घाटन किया। श्री सूद ने कहा कि गौ सेवा और संरक्षण हमारी संस्कृति, करुणा और सद्भाव के मूल्यों को और सुदृढ़ करते हैं। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज तिहाड़ जेल में गौशाला का उद्घाटन किया गया। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घुम्मन हेड़ा में एक आधुनिक मॉडल गौशाला बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस गौशाला में गाय संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और पशु चिकित्सा देखभाल के लिए उन्नत सुविधाएं होंगी। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने छात्राओं से संस्कृति, संविधान और राष्ट्र निर्माण को जीवन का लक्ष्य बनाने का आग्रह किया है। ये बात श्री इंद्राज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में संविधान दिवस के आयोजन पर कही। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से आग्रह किया कि पढ़ाई के साथ संविधान और देश के महापुरुषों के योगदान को जानें, जिससे युवा पीढ़ी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति सजग हो सके। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुल चुका है। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। वहीं मेले का विशेष राज्य झारखंड है। एक रिपोर्ट।
आज से आम लोगों के लिए खुल चुके व्यापार मेले में दिल्ली एनसीआर से लोग बड़ी संख्या में मेला घूमने पहुंचे। सुबह से ही अलग अलग हॉल में स्टॉल पर लोगों की भीड़ नजर आई। सबसे ज्यादा दर्शक संयुक्त अरब अमीरात, चीन और ईरान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलों पर दिखाई दिए। वहीं देसी व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए आगंतुक बड़ी संख्या में सरस आजीविका मेला में भी दिखाई दिए। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकारी निदेशक जीत लाल ने बताया,
इस वर्ष दर्शकों की सुविधा के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं की हैं, जिनमें के चिकित्सा बूथ लगाया गया है, हेल्प डेस्क है, एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। इसके अलावा दर्शकों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए भी हम रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रख रहे हैं।
वहीं आयुष मंत्रालय के पवेलियन में आयुष के साथ साथ स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत विषय पर आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए डॉक्टर कनिष्क गांधी ने बताया,
लोगों को अवेयर करना चाहते हैं होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इस बुक के यहाँ पे स्टॉल लगाया है।
मेले में टिकट का मूल्य व्यस्कों के लिए 80 रूपए और बच्चों के लिए 40 रूपए है। वहीं छुट्टी वाले दिन व्यस्कों के लिए 150 रूपए और बच्चों के लिए 60 रूपए है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। आगंतुक ITPO की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि आगंतुक शाम 5:30 बजे तक ही मेले में प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन स्थापित किया गया है। मेले के हॉल नंबर 6 में स्थापित इस पवेलियन में 150 स्टॉल्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा पवेलियन में पहली बार बात खादी की नामक पॉडकास्ट स्टूडियो भी तैयार किया गया है। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस मेले में देश भर के खादी कारीगर हिस्सा ले रहे हैं।
जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तब देश में सबसे पहले बात खादी की होती है। IITF के इस मंच से देश भर के करीब 150 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर उड़ीसा तक के हमारे कारीगर अपने अपने स्वदेशी उत्पाद लेकर यहाँ पर लोगों के सामने अपने एक से एक उत्पादों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अफ्रीकी मूल के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 20 किलो से अधिक मेथामफेटामाइन और 700 नशीला गोलियां बरामद की हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं इसके अलावा पुलिस ने मादक पदार्थ के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही एक मोबाइल लैब का भी भंडाफोड़ किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने 25 तारीख तक लाल किला पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है। नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान दिल्ली गेट और छत्ता रेल चौक से आने वाली बसों और व्यावसायिक वाहनों को रिंग रोड की ओर मोड़ा जा सकता है। लोगों को राजघाट से चंदगीराम अखाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड और बोलीवार्ड रोड तक रिंग रोड से बचने की सलाह दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने से आज नई दिल्ली में मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निकोलस रीसे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और इसके कार्यान्वयन की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने अपने अपने शहरों की चुनौतियों और नागरिक कल्याण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बिम्स्टेक युवा राजनयिक वार्षिक संपर्क कार्यक्रम आज नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में प्रारंभ हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के 14 युवा राजनयिक भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य मेनोपॉज देखभाल में सुधार पर केंद्रित वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक रूप से मान्य, सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक कार्यक्रम बनाना है जो आधुनिक मेनोपॉज देखभाल के पूरक हों। ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप के सेमीफाइनल में जैस्मिन लंबोरिया ने कजाकिस्तान की उल्जान सरसेनबेक को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कल फाइनल में जैस्मिन का मुकाबला चीनी ताइपे की वू शिही से होगा। आकाशवाणी समाचार की पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित नांग एकथानी मोंगलांग के साथ वार्ता प्रसारित की जा रही है। सुश्री एकथानी ने अरुणाचल प्रदेश की सरकारी माध्यमिक विद्यालय पचिन में केवल 2 वर्षों में 10वीं कक्षा का परिणाम 30% से 100% करके एक चमत्कार कर दिया था। इस श्रृंखला में उन्होंने अपनी चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी है।
When you are introducing something new, कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं आप, तो डेफिनेटली मतलब कोई डिस्करेज करने वाला बहुत सारे और इनकरेज करने वाला बहुत ही कम होंगे। आप कोशिश करने से पहले हारिए मत, कोशिश तो कीजिए, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए।
राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 62 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की। सरकार ने कायाकल्प पहल के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था लागू की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और गृह मंत्री आशीष सूद ने तिहाड़ जेल में गौशाला का उद्घाटन किया। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुला। और ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप में जैस्मिन लंबोरिया फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।